நமோ அரிஹந்தாணம், நமோ சித்தாணம், நமோ ஆயரீயாணம், நமோ வஜ்ஜாயாணம், நமோ லோயே சவ்விசாஹுடம். மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கௌதமோ கணி, மங்களம் குந்தி குந்தாத்யோ, ஜேன தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வ மங்கள மாங்கல்யம், சர்வ கல்யாண காரகம், பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம், ஜேனம் ஜயது சாசனம். நம ஸ்ரீ வர்தமானாய நிர்தூத கலிலாத்மனே, சாலோகானாம் த்ரிலோகானாம் யத் வித்யா தர்பணாயதே. ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि मान महात्मा का जीवन बाहर में कैसा होता है और उसको धर्मी के प्रति कैसा प्रेम होता है, उसकी चर्चा है, जिसको सम्यक्त्व के अष्ट अंगों के नाम से जिसकी चर्चा अपन विगत 7 दिन से कर रहे हैं, 6 दिन से अभी तक अपनी 6 अंगों की चर्चा हुई, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगुहन और स्थिति करण। और जो 2 अंग हैं वो ज्ञानी के बहुत अद्भुत हैं, एक बात सल्ले और एक धर्म प्रभावना। ये एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। अर्थात प्राणी मात्र पे प्रेम और गुणवान के प्रति बात्सल्य। बात्सल्य तो धर्मी के अंदर कूट कूट के भरा रहता है, निश्चय से जिसे अपने पर बात्सल्य नहीं है वे धर्मी पर भी बात्सल्य नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत तो अंदर से होती है, पानी का स्वभाव तो बहना है, काम बहेगा ये वो निश्चित नहीं करता, जहां ढलान होता है वहां बहता है। ज्ञानी के चित्त में अपूर्व वात्सल्य होता है, अपूर्व प्रेम, इसकी कथाएं ग्रंथों में भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। उसका हृदय अपार होता है, विशाल होता है, उदार होता है। ऐसा ना हो तो उसका जीवन पुराण चरित्र ना कहलाए, ग्रंथों में तीर्थंकरों के, महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो तो परम उदार और परम वात्सल्य भाव मिलेगा उसमें, अन्यथा तो फिर जिन धर्म कलंकित हो। वात्सल्य का देखिए 17 नंबर, हवे सम्यक्तु ना वात्सल्य नामना 7वां अंग ने कहवा वाड़ो श्लोक कहे छे। स्युत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा, बोलिए सुस्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैत, प्रतिपत्तिर यथा योगम वात्सल्यम अभिलप्यते। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप धर्म धारण करवा वालों ने समुदाय तो धर्मात्मानी पोतानी मंडली छे, रत्नत्रेना धारकोना जूथमा माने ग्रुप समूह है, रहवा वाला मुनि आर्यका श्रावक श्राविका तथा अव्रत सम्यक दृष्टियों प्रत्ये साचा भाव सहित कपट रहित यथा योग्य बिने रूप प्रवर्तन करवू उबा थवू सामा जवू वंदना करवी गुणोनो स्तवन करवू हाथ जोड़वा आज्ञा मानवी पूजा प्रशंसा करवी ऊंचा आसने विराजमान करी पोते नीचा आसने बेसवू एम ना आववाथी कोई दरिद्री ने महानिधान प्राप्त थवाती जेवो आनंद थाए तेवो आनंद थवो अधिक प्रेम उपजवो अनि समय अनुसार आहार पानी निवास सामग्री द्वारा बैया वृत्ति करी आनंद मानवो तेने वात्सल्य अंग कहे छे। थोड़ा विस्तार से लिखा पंडित जी साहब ने, ज्ञानी धर्मात्मा के प्रति अनंत वात्सल्य, अनंत वात्सल्य। निश्चय से तो एक नियम है कि जिसको जो पसंद है और जिसको जो धर्म पसंद है वह जीव उस धर्मी के साथ उसको सहज वात्सल्य वो होता ही होता है। ये नियम है। जैसे जिसको कुसंगति है वो कुसंगति वाले को पसंद करेगा, और जिसको जिन शासन और जिन धर्म पसंद आया है तो उसको सहज ही जिन धर्मी के प्रति महान उदारता होती है, और या तो अधिक गुणवान की बात है, इतना वात्सल्य होता है कि तन से मन से धन से कैसे भी उसके दुख को दूर करता है बाहर में वात्सल्य भाव में। आज चूंकि दो कथा लेनी है तो मैं सीधी कथा पर आता हूं, बाद में इसमें जो तात्विक बिंदु होंगे उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। वात्सल्य भाव की कथा आपने सुनी होगी जो रक्षाबंधन के नाम से जानी जाती है, रक्षाबंधन की कथा के नाम से। देश था और उसमें उज्जैन नगर, उज्जैन का नाम तो सबने सुना है, वहां उत्कृष्ट जैन निवास करते थे इसलिए उसका नाम उज्जैन पड़ गया। बहुत कथाओं में उज्जैन और हस्तिनापुर का नाम बहुत आएगा। उसमें एक राजा श्री वर्मा राज्य करते थे और उनकी चार मंत्री थी, प्रहलाद और नमुची, चार मंत्री। राजाओं के हाथ पैर मंत्री होते हैं, जिनके मंत्री दुष्ट हो उन राजा का कल्याण बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजा तो सर्वत्र बार बार भागकर जाएगा नहीं। राजा श्री वर्मा जैन धर्मी था, लेकिन उनकी जो मंत्री थी वो जैन धर्म के विरोधी थी। ग्रंथ में ऐसा लिखा, वो राजा उन मंत्रियों के बीच में ऐसा शोभा देता था जैसे सर्प से लिपटा हुआ चंदन का वृक्ष, क्योंकि मंत्री जिन धर्म के विरोधी थे और ये जिन धर्म का सेवक था। एक बार क्या हुआ, उस नगर में अकंपनाचार्य सासु मुनियों सहित पधारे। चातुर्मास का ही समय था, आज से चातुर्मास शुरू होगा। पधारे, इधर धर्मी लोग मुनि राजों के पूजन के लिए उनके उपदेश को सुनने के लिए वन जंगल में जाने लगे। पूरे नगर में धर्म का माहौल था, घर घर चर्चा रही धर्म की, सब लोग मुनि राज का उपदेश सुनने के लिए जा रहे थे। इधर क्या हुआ, मंत्रियों को राजा ने मंत्रियों से पूछा, ये सब प्रजा कहां जा रही है वन जंगल की ओर, महाराज ऐसे कोई नग्न मुनि आए हैं और पूरी जनता को भेका रहे हैं। मंत्री की बात को राजा नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकता, चुप कर सब चुप रहे और कोई जवाब न देते हुए कहा, कल प्रातःकाल हम भी दर्शनों के लिए जाएंगे। अकंपना चार्य को मालूम पड़ गया था, आचार्य मनोवैज्ञानिक होती है, आचार्य भौगोलिक स्थिति भी जानती है और सामाजिक स्थिति और राजकीय स्थिति भी जानती है। उनको पहले से मालूम पड़ गया था कि राजा के मंत्री दुष्ट हैं, तो उन्होंने मालूम पड़ा कि राजा दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो सभी मंत्रियों को ये आदेश दे दिया, बल्कि सभी मुनियों को, कोई भी राजा से या मंत्री से चर्चा नहीं करे, सब शांत और मौन रहे। मौन मूर्ख का भी लक्षण होता है और मौन ज्ञानी का भी लक्षण होता है। ज्ञानी कसाई प्रसंग में बोलते नहीं, उन्हें पता है कसाई बढ़ेगी। जहां बोलने से अज्ञान दूर होता हो वहां बोलते हैं। इधर सब मंत्री और राजा आचार्य अकंपनाचार्य के दर्शन करने के लिए पहुंचे। जिस समय आचार्य ने यह आदेश निकाला कि कोई भी परिचर्चा नहीं करेगा, यहां तक कि कोई आशीर्वाद भी नहीं देगा, ऐसे बैठे रहेंगे ध्यान में, उस समय एक मुनि वहां नहीं थे संग में, जिनका नाम था सूत सागर, वो तो आहार हेतु नगर में गए हुए थे। उन्हें आचार्य का आदेश ज्ञात नहीं है, वो क्या करते हैं। इधर आचार्य ने सबकी वंदना की और मंत्रियों ने आचार्य को भेजा, देखो लगता है ये मूर्ख है इसलिए मौन हो गए, देखो कितने अभिमानी हैं, आशीर्वाद भी नहीं दे रहे आपको, आप राजा हैं और गद्दी से उतर कर आए हैं, देखो आपको आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। अरे सत्य तो ये है, मुनि राजों पर एक जिंदाद का शासन चलता है और किसी राजा का शासन नहीं चलता। जिसके सिर पर अकेले एक जिंदेव होते हैं वो किसके शासन में चले और क्यों चले। दुनिया में भी हम सब कह रहे हैं आपको, भले ही पुण्य पाप के उद्देश्य शासन में कोई भी राज्य करे, लेकिन तीनों लोक में एक जिनेन्द्र का शासन चलता है, क्योंकि तो तीनों लोक में अकृत्रिम जिनबिंब जिनेन्द्र के शासन की घोषणा करते हैं। जैन दर्शन में शासन का अर्थ दबाना नहीं है, शासन का अर्थ है जैसा जिनेन्द्र ने कहा वस्तु स्वरूप वैसा है, इसका नाम है शासन। इधर मंत्री और राजा वापस आ गए और रास्ते में श्रुत सागर महाराज आहार लेकर आ रहे थे। मंत्रियों ने राजा को भड़काया, देखो एक बैल पेट भरकर सामने से आ रहा, समझ में आया व्यंग कसा। महाराज इनमें ज्ञान नहीं होता, केवल भोजन करते हैं इसलिए मौन रहते हैं। श्रुत सागर को सहन नहीं हुआ, वो अपने लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने जिन शासन का अवर्णवाद होता जाना, तो उन्होंने सागर मुनिराज ने उन मंत्रियों से कहा, व्यर्थ प्रलाप करने से क्या लाभ है, यदि तुम में जरा भी कोई ताकत है तो मैं जिन शासन का पुत्र हूं मेरे से वाद विवाद करो। बस मंत्रियों में वाद विवाद हुआ, मंत्रियों में तो दिमाग ही नहीं था, कसाईवान व्यक्ति में दिमाग कहां से होगा। तत्काल वो हार गए और लज्जित होकर चले गए। राजा ने मुनिराज को नमस्कार किया, धन्य है जिन शासन। अब चारों मंत्रियों की सारी रात पीछे, अरे रे इन मुनिराज ने हमारा राजा के आगे अपमान कराया, इसका बदला लेना है। इधर रात को नंगी तलवार लेकर निकले, इधर श्रुत सागर जब संग में पहुंची तो उन्होंने आचार्य को पूरी घटना बताई कि रास्ते में मैंने जिन मंत्रियों को जैन धर्म में हरा दिया। तब आचार्य बोले, श्रुत सागर तुमने जैन धर्म को नहीं हराया, तुमने संघ को संकट में डाल दिया। जैन धर्म हारा कब था जो जिता दिया, ये जीता कब था। वास्तव में तो कोई वचनों से वस्तु ना हारती है ना जीतती है, स्वभाव तो सदा ऐसा ही रहता है। तुमने बहुत गलत काम किया है, वो मंत्री कसायवान है, वो बदला लेने के लिए आएंगे, जाओ। मेरा आदेश है कि जिस स्थान पर वाद विवाद हुआ तुम उस स्थान पर जाकर वहीं खड़े हो जाओ। आचार्य का आदेश, वो मुनिराज सागर उसी स्थान पर खड़े हो गए जाकर। इधर आधी रात को जब नंगी तलवार लेकर संघ को मारने के लिए चले चारों मंत्री, तो श्रुत सागर को देखकर उन्होंने सोचा इन्हीं से तो वाद विवाद हुआ है, अन्य मुनियों को मारने से क्या लाभ, अकेला इन्हीं का वध कर देते हैं। और उन्होंने नंगी तलवार से मुनिराज की गर्दन अलग करना चाहा। उस स्थान पर व्यंतर था, नगर देवता, व्यंतर होते हर नगर में। उन्होंने देखा रे निर्दोष मुनि पर उपसर्ग कर रहे हैं पापी, तो जैसे ही उन्होंने तलवार से गर्दन अलग करनी चाहिए, व्यंतर ने उनको कीलित कर दिया और वो वही पत्थर जैसे बनकर रहे। लेकिन मुनिवर तो सारी रात वहीं खड़े रहे। जब प्रातः काल हुई, सूर्य का उदय हुआ, लोग दर्शन करने लगे, मुनिराजों के पास जाने लगे, तो चारों मंत्रियों का जब ये दृश्य देखा तो पूरे नगर में हल्ला मच गया। अरे मंत्री तो दुष्ट हैं, मुनिराज को मारने चले। इधर राजा आया भागा भागा, उसने ये दृश्य देखा और मुनिराज से क्षमा मांगी। मुनिराज ने कहा मैंने तो किसी को नहीं कहा। फिर मुनिराज ने परोक्ष रूप से देव को आह्वान किया और कहा कि मैं इनको क्षमा दान देता हूं, आप भी इनको क्षमा करें। तो चारों मंत्री खुल गए और वहां से चले गए। राजा ने गुस्से में आकर उनको गधे पर बैठाकर उनका काला मुंह करके देश निकाला दे दिया। मुनिराजों का वध करते हो, इससे ज्यादा और राजा क्या करता, देश निकाला दे दिया। इधर ये चारों, ध्यान देना, अपमानित होने पर ज्ञानी का वैराग्य बढ़ता है और अज्ञानी में बैर बढ़ता है, बैर बढ़ता है। मान भंग होने पर ज्ञानी को सत्य स्वरूप समझ में आता है और उसे ऐसा लगता है कि अरे सैकड़ों कथाएं हैं ऐसी कि जो मान भंग हुए और भंग मान में सम्यक दर्शन क्या, मुनि बनकर केवल ज्ञान ले लिया। लेकिन चारों मंत्रियों को अपना दोष समझ में नहीं आया, बल्कि अज्ञान से भरी थी और बदले लेने की भावना से वहां से चले गए। और ये घूमते घूमते हस्तनापुर पहुंचे चारों मंत्री, उस देश से तो निकल गए। बच्चों समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा। हस्तनापुर में एक राजा रहता था, उसका नाम था महापद्म। क्या नाम था? महापद्म। उनके दो पुत्र थे पद्म और विष्णु। तो महापद्म ने पद्म को राज्य देकर विष्णु के साथ स्वयं जिन दीक्षा ले ली। पहले राजा महाराजा ऐसा ही करते थे। विष्णु कुमार भी बहुत बैरागी थे, उन्होंने भी नग्न दिगंबर दीक्षा ले ली थी। इधर हुआ ऐसा कि चारों मंत्री हस्तनापुर पहुंचे। राजा पद्म मंद कसाई थे, शांत नेचर के थे। तो एक पड़ोस का राजा सिंहबल उन्हें आए दिन परेशान करता था, आक्रमण करता था, धन लूट ले जाता था, जैसे हिंदुस्तान को पाकिस्तान परेशान करता। ये हर युग में घटनाएं होती थी, आज ही होती है ऐसा नहीं है, पहले भी होती थी। युग तो युग के हिसाब से चलेगा। तो राजा ने जब ये चारों मंत्री पहुंचे, उन चारों मंत्रियों ने कहा हम कुशल मंत्री हैं, आप हमें अपने राज्य के मंत्री बना ले। बोले जब यदि तुम सिंहबल राजा को पकड़कर मेरे चरणों में ला दो तो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा, पद्म राजा ने कहा। अभी चारों तो दुष्ट थी, दुष्ट को दुष्ट ही बस में करता है, ऐसी संस्कृत में लोकोक्ति है, सठम साठे समाचरित, माने लोहे को लोहा काटता है। और सज्जन तो बेचारा क्या करेगा। तो उन्होंने अपनी दुष्टता से उसको बंदी बनाकर पद्म के चरणों में डाल दिया। और राजा पद्म बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो, आपको क्या इच्छा है, आपकी हर वरदान पूरा होगा। इन्होंने कहा महाराज अभी तो हमें आवश्यकता नहीं है, भविष्य में आप अपनी वचन को धरोहर के रूप में रखें, जब भविष्य में आवश्यकता होगी तो मांगे। इससे एक बात सिद्ध होती है कि कभी भी बिना सोचे विचारे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। और जिन जिन ने वचन दिए उन उनकी ऐसी दुर्गति हुई पूछो नहीं। एक बार राजा दशरथ ने केकई को वचन दे दिया था युद्ध के समय, और जो सरल व्यक्ति होगा वो उसी समय मांग लेगा, और यदि नहीं मांगना है तो मना कर देगा। जिसके मन में छल है वो ही कहेगा कि आप रखो, मैं भविष्य में बताऊंगा। इधर चारों मंत्री बन गए और काल क्रम से अकंपनाचार्य आदि सासु मुनिराज विहार करते हुए हस्तनापुर आए, और हस्तनापुर में इन्होंने चातुर्मास की स्थापना की मुनिराजों ने वर्षा ऋतु में। और जैसे इन चारों मंत्रियों को मालूम पड़ा, अरे ये तो वही मुनिराज हैं जिनके कारण हमको अपमानित होना पड़ा, अब इनसे बदला लेंगे, बदला लेने का समय आ गया। उन चारों में भी जो बलि था वो बहुत दुष्ट था, उन चारों का नेता था, उसने षड्यंत्र रचाया और राजा के पास गया। राजन, आपने कहा था कि कोई भी वरदान मांगो, अब वरदान लेने का समय आ गया है। बोले, मांग लो, जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारा वचन भंग नहीं होगा। कि 7 दिनों का राज्य, 7 दिन का राज्य चाहिए। पहले राजा महाराजा ऐसी होती थी, वो धोती दुपट्टा पहनकर महल में पहुंच गया और राजा उनको बना दिया, दिया 7 दिन का राज्य। इन्होंने दुष्टता से पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया, शोर मचाया कि यज्ञ कर रहे राजा, तो मुनिराज के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगा दिए, चर्म आदि चमड़ा आदि लगा दिया, हड्डियां लगा दी और आग लगा दी चारों तरफ मुनिराज के। और इधर मुनिराज के चारों तरफ ऐसा भीषण धुआं और आग लगाने से मुनिराज झुलसने लगे, चारों तरफ संकट, पूरे हस्तनापुर के श्रावक श्राविकाएं रोने लगे, अरे मुनिराजों पर ये पापी भीषण उपसर्ग कर रहा है, राजा देख क्यों रहा है, राजा को क्या हो गया, राजा तो जिन धर्मी है, लेकिन वो तो वचन दे चुका था। वचन की कीमत होती थी पहले लोगों की। इधर क्या करें, वन जंगल में एक महाराज थे श्रुत सागर दूसरे, उनको रात्रि में एक नक्षत्र कांपता नजर आया, उस निमित्त ज्ञान से उन्होंने जाना कि हस्तनापुर में मुनियों पर संकट आया है, भारी संकट आया है, उनको बचाना चाहिए, लेकिन उन पे खुद ताकत नहीं कि वो बचा ले। उनके संग में एक क्षुल्लक रहती थी, तो उन्हें निमित्त ज्ञान से मालूम हुआ कि इस संकट से यदि मुनिराजों को कोई बचा सकता है तो विष्णु कुमार मुनि बचा सकते हैं। विष्णु कुमार मुनिराज पर विक्रिया रिद्धि भी है। उन्होंने छुल्लक से कहा अपने संघ की कि तुम शीघ्र जाओ विष्णु कुमार मुनिराज को बोलो कि तुम्हें विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है। उन्हें नहीं पता विष्णु कुमार को कि मुझे विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई है, इनको पता है। तो इधर छुल्लक आकाशगामनी विद्या से गया और विष्णु कुमार को कहा कि तुम्हारे भाई के राज्य में, तुम्हारे छोटे भाई के राज्य में ऐसी दुर्घटना हो रही है, मुनिराजों पे भीषण उपसर्ग हो रहा है, मुनिराज महापाप होगा, ये परम पवित्र दिगंबर मुनिराज जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते उनकी रक्षा करो, ध्यान देना। विष्णु कुमार जानते थे मुनि पद में तो ऐसा कार्य संभव नहीं है। अच्छा बताओ, एक कोई प्यासा व्यक्ति मुनिराज के पास जाए तो मुनिराज कमंडल से पानी पिला सकते हैं या नहीं, बोलो? वो कैसी भूल, अब कोई कहेगी तो बड़े निर्दयी है। बात निर्दय और दया का नहीं, वो उस भूमिका से ऊंचे उठ गए हैं। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में ऐसा भाव नहीं आता। अरे मुनिराज को कोई सामने वाला प्यास से पीड़ित दिखाई नहीं देता, उन्हें तो इच्छा से दुखी दिखाई देता है प्राणी। इधर विष्णु कुमार ने अपना पहले मुनि धर्म छोड़ा, क्योंकि मुनि धर्म में ये काम नहीं हो सकता। मुनिराज किसी बेरी का प्रतिकार नहीं करते, भले ही कोई शरीर के सहस्र खंड कर दे। सहस्र खंड कर दी कोई। मुनिपद तो किसको कहते हैं? मुनिपद साधारण बात है क्या? मेरे से अधिक आपने देखा है। मैं तो कहता हूं कि गुरुदेव जैसे महापुरुष, उन्होंने कभी जीवन में अपने विरोध करने वाले का विरोध नहीं किया, तो मुनिराज की भूमिका तो और तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाली है। साधारण घटना है क्या ये? इधर क्या हुआ कि उन्होंने बोने का रूप बनाया, बोने का वो तो यज्ञ रचा रहे थे। वहां जाकर सबसे पहले तो पद्म भाई के घर गई कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने राज्य में मुनियों पर उपसर्ग करा रहे हो। पद्म चरणों में गिर गया, महाराज मैं क्या करूं, मैंने तो 7 दिन का राज उनको दे दिया, अब वो दुष्ट मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी दुष्टता करेंगे, अब तुम हटो मैं करूंगा। फिर उन्होंने बोने का रूप बनाकर वहां पहुंच गए जहां मुनियों पर उपसर्ग हो रहा था भारी, और उन मंत्रियों से कहा, हमने सुना है आप यज्ञ कर रहे हैं तो हमें दान दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले 3 पग भूमि चाहिए, मात्र 3 पैर भूमि। बोले इतना सा बोना, 3 पैर इतनी सी जमीन होगी, और बड़ी ले ले। खुश होकर बोले नहीं महाराज, 3 ही पग दो बोना, बस 3 दीजिए। 1 पग तो रखा उन्होंने सुमेरु पर, दूसरा रखा मानुष्योत्तर पर, विक्रिया रिद्धि थी, और तीसरा कहां रखें? तो उन्होंने बाली के सर पर पैर रखना चाहा। बोला तीसरा तेरे सर पे रखें क्या? इस घटना से पूरा लोक, मध्य लोक हिल उठा, मतलब कंपायमान हो गया। देवता लोग शोर मचाने लगे, क्षमा करो प्रभु विष्णु कुमार, क्षमा करो, क्षमा करो। पूरे यज्ञ में शोर मच गया, चारों मंत्री विष्णु कुमार के चरणों में गिर गए। रिद्धि से आकाश में बारिश करी जिससे मुनिराजों का वो संकट दूर हो जाए, वो पूरी आग मिट गई। विष्णु कुमार के चित्त में उन मुनिराजों के प्रति प्रेम जागा, यद्यपि मुनि के योग्य वो कार्य नहीं था, सुनना ध्यान पूर्वक, तथापि एक विशेष घटना घटी। उन्होंने वो मुनि धर्म छोड़ा, उसको छोड़कर मुनिराजों की रक्षा करने के लिए पहुंचे। बात सल्ले जागा, सच तो ये है, तन देकर, ज्ञान देकर, मन देकर, चाहे जैसी धर्मी को जो धर्मी की रक्षा करने का परिणाम आता है वो वास्तव में वात्सल्य अंग कहलाता है। निश्चय से तो कौन किसकी रक्षा करे? हर जीव स्वयं स्वरूप तो सदा रक्षित है, उसे तो कोई मार मिटा नहीं सकता। अपने परिणामों से ही अपनी अरक्षा होती है और अपने परिणामों से ही अपनी रक्षा होती है। विष्णु कुमार ने ऐसा किया। नगर मुनिराजों की दशा देखकर अश्रु धारा से पूरे श्रावक रोने लगे, और मुनिराज आहार के लिए निकले, आहार के लिए पड़गान विधि हुई। वो दिन वात्सल्य पर्व रक्षाबंधन पर्व के नाम से चला। ये बहन भाई का कहां से आ गया ये आज तक समझ में नहीं आया। सच बात तो ये है कि ये बहन भाई का अन्य मत में आता है, अपने यहां तो धर्मी धर्मी की रक्षा की बात है, साधर्मी साधर्मी की रक्षा की बात है, साधर्मी साधर्मी की, धर्मी धर्मी की। ऐसी ऐसी घटना है और पूर्व की आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। इसमें ऐसा नहीं देखा जाता, एक मंदिर बनाने से भी अधिक पुण्य है एक धर्मी की रक्षा करना। न धर्मो धार्मिकैर विना, धर्म धार्मिक के बिना नहीं रहता कभी भी। यदि धर्म है, ऐसी घटना एक और मिलती है कि राम लक्ष्मण ने एक राजा वज्र कर्ण की रक्षा करी थी, जिसको किसी दुष्ट राजा ने अपनी जेल में डाल दिया था, और इसीलिए कि वो उसको नमस्कार नहीं करता है, वो उसको नमस्कार नहीं करता। बोले नहीं, मैं देव गुरु धर्म को छोड़कर और किसी को नमस्कार नहीं करता। और राम लक्ष्मण को मालूम पड़ा तो जाकर उनको बचाया। पंचाध्यायी में भूमिका का ज्ञान होना चाहिए, इतना भी कायर नहीं बन जाना चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा कोई हो, या आपके घर में कोई बहन बेटी है, और उसके सील पर कोई आक्रमण हो जाए तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? बोलो, आप देखेंगे, आप देखते रहेंगे क्या, एक गाय, एक जो गाय होती है और गाय का बछड़ा वो आग से कदाचित आग लग जाए, तो ऐसी कथाएं मिलती हैं कि गाय जल जाएगी, मर जाएगी, लेकिन उस बछड़े को छोड़कर नहीं जाएगी, उसको छोड़कर नहीं जाती। बंदर है वो भाग जाएगा, अन्य पशु है वो भाग जाएगा, क्योंकि यदि गाय चली गई बछड़े को छोड़कर तो बछड़े का क्या होगा। तो संकट के काल में वैसे तो ज्ञानी के चित्त में धर्मी के प्रति सहज बात्सल्य होता है, क्योंकि तो सोलह कारण भावना में भी बात्सल्य भावना आती है, बोला आती है नहीं आती है, कितना लबालब चित्त प्रेम से भरा रहता है। अरे अपने संबंधियों से, अपने कुटुंबियों से तो अनंत बार प्रेम किया है, लेकिन कभी हमने धर्मी से प्रेम नहीं किया। धर्मी को संकट में जानकर भी उसकी उपेक्षा करे तो समझना उसे धर्म से प्रेम नहीं है, धर्म से प्रेम नहीं है, बल्कि धर्म का दिखावा है। सच्चा प्रेम होता तो वो उसके काम आता, उसके दुख संकट को मिटाता। यहाँ तो मोक्ष मार्ग के अर्थ में है। ऐसा मुनि विष्णु कुमार ने बाद में स्वयं प्रायश्चित लिया, यद्यपि हुए वो बात्सल्य अंग में प्रसिद्ध, तथापि मुनिराज ने प्रायश्चित लिया कि मुझे मेरे मुनि धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए था, प्रायश्चित लिया और प्रायश्चित लेकर पुनः मुनिराज हुए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ, वैसे हम कोई तुलना नहीं कर रहे किसी में, अकंपनाचार्य महान थे ज्यादा या विष्णु कुमार, बोलो। हाँ जी, अकंपनाचार्य ज्यादा महान थे या विष्णु कुमार? यद्यपि बात्सल्य अंग की नजरिया से देखें तो विष्णु कुमार में महानता ज्यादा कहलाएगी, लेकिन धन्य तो वो अकंपनाचार्य थे कि भीषण अग्नि के उपसर्ग के काल में भी सभी मुनिराजों को यह आदेश दे दिया कि कछुए की तरह अपने स्वरूप में समट जाओ, अपने स्वरूप में चले जाओ। देह तो उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन घर छोड़ा था, आज तो देह पृथक होता हुआ नजर आएगा, धन्य तो वो अकंपना चाहते थे। इस कथा से बहुत सीखा जाता है। आज हम सच कह रहे हैं आपको, हम कोई कृत्रिम कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं, कि बात्सल्य का अभाव देखा जाता है। यदि बात्सल्य ना हो तो जिन धर्म की प्रभावना भी नहीं हो सकती। यथार्थ देखा जाए तो बात्सल्य और प्रभावना एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। जहां बात्सल्य नहीं है वहां वो जिन शासन की प्रभावना नहीं कर रहा, अपनी प्रभावना कर रहा है, और जहां बात्सल्य है वो सच्ची जिन शासन की प्रभावना करता है। एक जिसके चित्त में बात्सल्य है वो तीनों लोक उस पर मोहित हो जाता है, तीनों लोक। बिना बात्सल्य के जिन धर्म की प्रभावना नहीं होती। इसलिए धर्मी के जीवन में सहज, प्रसन्न, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य आदि गुण होते हैं। चूंकि आज ये अष्टंग का अंतिम दिन है, इसलिए हम प्रभावना की भी चर्चा करेंगे। प्रभावना में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में सुनो सुनो सुनो, कहा रत्नत्रय के तेज से आत्मा को प्रभावित करना, ये प्रभावना अंग है। माने रत्नत्रय का तेज प्रकट होना वो प्रभावना है। आराधक ही प्रभावक होता है। जिसको स्वयं सम्यक ज्ञान नहीं है वो प्रभावना नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि से प्रभावना नहीं होती है भाई। ये भी जो हम ऊंचे बैठे हैं सुविधा की दृष्टि से बैठे हैं, हम कोई प्रवचन नहीं करते, स्वाध्याय है ये, प्रवचन नहीं कर रहे हम, स्वाध्याय है ये, बांचना है बस ये। वास्तव में तो प्रभावना मुनि भगवंत करते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा करते हैं, हम क्या प्रभावना करेंगे। तो वो प्रभावना अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, एक वज्रबाहु मुनिराज हुए हैं। घटना संक्षिप्त में ही बताऊंगा, कुछ प्रश्न भी बहुत हैं, उनके समाधान भी करना है। पहले हम ये अंग पढ़ेंगे मिलकर, इसमें पेज नंबर है 18वें नंबर का श्लोक है। हवे प्रभावना नामना सम्यक्तना आठवां अंगे ने कहवा वाला श्लोक कहे छे। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, बोलिए, मपाकृत्ते यथायथम्, जिन शासन महात्मम्ये प्रकाशः स्यात् प्रभावेन। प्रभावन भी है, प्रकाशः स्यात् प्रभावन। संसारी जीवो ना हृदय मा व्यापेला अंधकारनी सत्यार्थ स्वरूप ना प्रकाश वडे दूर करी, जिनेन्द्र ना शासन नु महात्म्य बतावू, ते प्रभावना नाम नु सम्यक्तु नु आठवा अंग छे। सुनना ध्यान पूर्वक, सम्यक ज्ञान के द्वारा अज्ञान अंधकार को दूर करना, वो तो ज्ञान ही कर सकते हैं। तो इसमें एक वज्र कुमार मुनि थे और मथुरा में एक राजा रहता था, उसका नाम था पूति गंध राजा। बच्चों सुनो, पैर ऐसा नहीं करते जिनवाणी के आगे। उनकी एक स्त्री थी रानी, उसका नाम था उर्विला, उर्मिला नहीं, उर्विला। उसी नगर में एक सेठ रहता था, उसकी एक दरिद्रा कन्या थी। सेठ मर गया तो सेठानी ने कन्या को ऐसे छोड़ दिया। एक मुनिराज ने भविष्यवाणी की, ये कन्या भविष्य में इस राजा की पटरानी बनेगी। ये सुनकर एक बौद्ध गुरु उस कन्या को उठाकर ले गए और बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और उसका लालन पालन किया बेटी की तरह। बाद में राजा ने एक दिन इस कन्या को झूला पर झूलते देखा और उस पे मोहित हो गया। बौद्ध गुरु तो चाहता ही ये था, तो उससे उनकी शादी विवाह हो गया। राजाओं की बहुत शादियां होती थी, पहले उर्विला पटरानी थी, अब इसको पटरानी बना दिया। इधर क्या हुआ कि उर्विला जिन धर्म की प्रेमी थी और अष्टानिका में रथ यात्रा निकालती थी, अष्टानिका की चर्चा है रथ यात्रा, और जिनेन्द्र का रथ निकलता था। अब तो घर में दो दो रानी हो गई, अब दो दो रानी और झगड़ा आपस में। वो ये बोलती कि नहीं, मेरे बौद्ध भगवान का रथ पहले निकलेगा, पटरानी ये कहे। अब राजा किसकी बात मानेगा, पटरानी की बात मानेगा। राजा उर्विला को समझाता है, तुम हट मत करो, देखो ये बोल रही है, तुम्हारे भगवान का रथ कब से निकल रहा है, इस बार यदि उनका निकल जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन उसके मन में टीस कि यदि जिन शासन का रथ आगे नहीं निकला तो अप्रभावना होगी। देखो प्रभावना अप्रभावना छोटी छोटी बातों से भी कभी कभी हो जाती है। हो सकता है सारी जिंदगी स्वाध्याय कराने वाला सारी जिंदगी चीख चीख के बोले, उससे इतनी प्रभावना ना हो। और एक प्रेम पूर्वक ग्वाले ने पुस्तक दे दी मुनिराज को, केवल इस भावना से कि अरे मैं तो अज्ञानी हूं, मैं नहीं पढ़ सकता, ये आप पढ़ो। और उसके फल में कुंद कुंद बन गए। मैं तो ये भी कहता हूं, यदि यहां प्रेम पूर्वक कोई फर्श भी बिछा दे तो सोधर्म बन इंद्र बनने जैसा पुण्य उपार्जित कर लेता है। केवल इस भावना से, किस भावना से, अरे सब साधर्मी आएंगे और ये जिन शासन सुनेंगे तो कोई अव्यवस्था नहीं रहनी चाहिए। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बात साधारण नहीं है। इधर रानी ने अन्न जल छोड़ दिया, बोले नहीं, यदि जिनेन्द्र का रथ पीछे निकला तो पूरे राज्य में ये खबर जाएगी, लगता है राजा ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया है और लोग जिन धर्म से उदासीन हो जाएंगे और बौद्ध धर्म अपनाने लगेंगे, मेरे जिन धर्म की अप्रभावना होगी, मैं मर जाऊंगी मिट जाऊंगी लेकिन कैसे भी मेरे प्रभु का रथ आगे निकले, ऐसी घटना प्रभावना की। राजा ने कहा तुम हट तो करो मत, अभी नई नई शादी हुई है इसकी, इसकी बात सुनी जाएगी, ये पटरानी है। बोले पटरानी से क्या मतलब है, सत्य कौन है। बोले देखो सत्य क्या है मैं ये नहीं जानता, पटरानी के आदेश को माना जाएगा। हाँ एक उपाय है, मैं बौद्ध और जिन धर्म में वाद विवाद रखता हूं, जो वाद विवाद में जीत जाएगा उसका रथ आगे निकलेगा। उलियवासी है। अब उसने कन्या ने बौद्ध गुरु को बुला लिया अपने को। इधर ये परेशान आसपास कहीं कोई मुनि नजर नहीं आए। ये तो इस जमाने में अभी गुरुदेव की कृपा से इतने लोग स्वाध्याय करने वाले हो गए। उस जमाने में कहां थे ऐसे, कौन स्वाध्याय कराए, कौन वाद विवाद करे, और किसका चित्त है ऐसा कि वाद विवाद करे। ज्ञानी को तो वाद विवाद पसंद ही नहीं है। वाद विवाद करे सो अंधा, ज्ञानी कहे सहज का धंधा। इधर एक वज्रबाहु मुनिराज मिले उनको, और वो वज्रबाहु मुनिराज विशेष कोई प्रवचन आदि की कला नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। उन्होंने रानी ने वहां पहुंची, महाराज कल वाद विवाद है और जिन शासन को आपको विजयी बनाना है। बोले मेरे को तो प्रवचन ही करना नहीं आता, मैं तो आराधना करता हूं स्वरूप की, मैं किसी से वाद विवाद नहीं कर सकता। रानी चरणों में गिर गई, महाराज ये अकेले आपकी बात नहीं है, बात है पूरे जिन शासन की प्रभावना और अप्रभावना की। यदि जिन शासन हार गया तो अकेली मैं नहीं हारूंगी, पूरा राज्य अन्य मत अंगीकार कर लेगा, अन्य मत अंगीकार कर लेगा। इधर वज्रबाहु मुनिराज ने परोक्ष रूप से पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया और बिना किसी विकल्प किए प्रातःकाल वहां पहुंच गए। उनमें न जाने सरस्वती की कृपा से, जिन शासन की प्रभावना की कृपा से ऐसा बल आया कि क्षण में ही उन्होंने बौद्ध गुरु को परास्त कर दिया। सत्य ही नहीं, सत्य है तो अकेला जैन शासन में, दूसरी जगह नहीं। गुरुदेव श्री के पास भी कई लोग चर्चा के लिए जाते थे, मालूम लगे उनको कि ये योग्य है, पात्र है, तो चर्चा करें, वरना बोले थई गई चर्चा हो गया, कौन किससे चर्चा करे, कैसे करे। भैया गुरुदेव की घटनाओं का मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको है, मुझे कोई विशेष ज्ञान नहीं है, मैं तो आपके मुंह से कई सुनता हूं तो सहज रूप से बोल देता हूं। अभी कल सुबह प्रवचन में एक मक्खन वाली घटना आई थी, तो मुझे मालूम पड़ा वो अप्रमाणिक है, प्रमाणिक नहीं, मेरे मुख से निकली, उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। वो कैसे मेरे ज्ञान में रह गई, वो अप्रमाणिक थी। भाई जी ने भी बताया मुझे, हेमंत भाई जी ने, कि हमने देखा था वो ऐसी घटना कभी घटी नहीं। अब उन्होंने क्यों कहा मेरे को, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, बाकी वो घटना 100% अप्रमाणिक थी, मेरी गलती है उसको बोलने में। तो गुरुदेव भी प्रभावना के इतने प्रेमी थे, जो हर क्षण ये कहते थे कि दया दान व्रत पूजा आदि में धर्म न थी, उनके सानिध्य में सैकड़ों प्रतिष्ठाएं हो गई, वेदी प्रतिष्ठा इत्यादि कितने हुए, जिनने तीन तीन यात्राएं करी, बड़ी और भारी प्रभावना। वही गुरुदेव श्री शुद्धात्मा के गीत गाने वाले जिनेन्द्र की भक्ति में बैठते थे, सबको मालूम है, नमस्कार करते थे, पूरा माथा झुकाकर नमस्कार करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इस काल में यदि प्रतिष्ठा आदि का निषेध कर दिया, नहीं हुई, तो वो ये शासन समाप्त हो जाएगा। सत्यवाद की स्थापना करते हुए भी बाह्य प्रभावना अविरल रूप से चलती रही उनकी, बोलो चली या नहीं चली, सब सब साक्षात हैं उनके। हमें तो जब गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ 80 में, हमारा तो 75 के लास्ट का जन्म है, 75 के लास्ट का, तो हम तो जानते ही नहीं थे कि गुरुदेव क्या है, कौन है। आज भी हम ऐसे गांव के हैं कि जहां गुरुदेव का नाम ज्यादा लोग नहीं जानते, तो मैं कभी कभी जाता हूं तो मेरे से पूरे गांव को प्रेम है, तो हमसे लोग ये बोलते हैं आप ऐसा करो एक बार अपने कांजी स्वामी जी को यहां लेकर आओ ना। अब उनको यही नहीं पता कि ये बहुत पहली घटना है, ऐसा एरिया है वो तो, यमुना नदी के किनारे बिल्कुल एकांत में पड़ा हुआ, लोग भोले भाले हैं, किसी को ना धर्म पता ना अधर्म पता ना कुधर्म पता, कुछ पता ही नहीं है। बहुत भाग्य से प्राप्त होता है सच्चा धर्म, जिसने करोड़ों जन्म का पुण्य फटा हुआ कर, करोड़ों जन्मों का पुण्य, तब जाकर जिन शासन की प्रभावना का अवसर मिलता है। अरे लोग पाप के कार्यों की कैसी प्रभावना करते हैं, टीवियों पर कितनी गलत प्रचार होता है हर चीज का, और हम जिन शासन की प्रभावना में कमजोर हो जाएं, ये फिर इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगी। वो मुनिराज भी जिन शासन की अप्रभावना ना हो जाए वहां पहुंची और जिन शासन को विजयी बनाया, तो ये देखकर राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जिन धर्म अंगीकार कर लिया, पूरे राज्य ने जिन धर्म अंगीकार कर लिया। और वो बज्र बाहु मुनिराज, कहीं बज्र कुमार आता है, वो बज्र कुमार मुनिराज प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए। प्रभावना अकेले उपदेश से नहीं होती है, बाह्य प्रभावना दानादि से भी होती है। बाह्य प्रभावना आपने किसी को यह भी कह दिया कि अष्टानिका चल रही है भैया, स्वाध्याय चल रहा है, विधान चल रहा है, किसको ये कह दिया, तो आपको प्रभावना का फल प्राप्त होगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कभी कभी हम लोग जिन शासन की प्रभावना में कमजोर हो जाते हैं, आजकल युग एडवर्टाइज का है, यदि हमने जिन शासन को बाहर, मैं सच कह रहा हूं, ये गुरुदेव की बातें ऐसी है परम सत्य कि भले ही मंदिरों में रहने वाले लोग सुने या ना सुने, यदि चौराहे पर भी ये बात कही जाए तो लाखों लोग इसके दीवाने हो जाएं, ऐसी बातें हैं ये, लाखों लोग दीवाने हो जाएं, ऐसा विशाल तत्व ज्ञान है ये। इस तरह से प्रभावना यंग में बज्र कुमार प्रसिद्ध हुए। आठ अंग की संक्षिप्त कथा हमने आपको बताई। अब कुछ भाई और बहनों के बहुत प्रश्न हैं, तो आज मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान है ऐसा नहीं है जितनी मेरी सामर्थ्य है उसके अनुरूप मैं समाधान करने की चेष्टा करता हूं। कुछ तो फोन भरा पड़ा है मेरा, लोग भेज दे, हम मिलने आए थे आप मिले नहीं, तो प्रश्न, एक प्रश्न तो ये है कि जब हमारा मोक्ष जाना निश्चित है, मोक्ष जाना निश्चित है और मोक्ष जाना क्रमबद्ध है, तो फिर हम पुरुषार्थ करें या ना करें? वैसे तो गुरुदेव श्री ने बहुत उत्तर दिया है, आप स्वयं उत्तर दोगे इसका। मान लीजिए पारला से एक लोकल ट्रेन मुंबई आधा घंटे में पहुंचती है और अनाउंस हुआ ये ट्रेन 30 मिनट में पारला मुंबई पहुंचेगी, तो मेरा प्रश्न है चलकर पहुंचेगी या बिना चले पहुंचेगी? अरे बोलो, नहीं कोई कहे नहीं, घोषणा हो गई है पहुंचेगी, तो जब घोषणा हो गई है और वो पहुंचेगी तो चलकर ही पहुंचेगी ना। तो जब भगवान ने कार्य का काल की क्रमबद्धता देखी है तो भगवान ने उसमें पुरुषार्थ भी देखा है। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने ऐसा नहीं देख लिया उन्होंने कि तू बिना पुरुषार्थ किए तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। यदि भगवान ने नरक गमन देखा है तो ये भी देखा है कि तू पापाचार में लीन होएगा। तो आप कहोगे फिर हमें क्या पता भगवान ने क्या देखा है हमारे विषय में, हमें क्या पता? वर्तमान में सौधर्मिंद्र नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं, केवली नहीं, कोई वर्तमान में है नहीं, हमें क्या पता? लेकिन जिसको ये मालूम पड़ता है कि होने वाला परिणमन सुनिश्चित है, भगवान ऐसा कहते हैं कि जिसको क्रमबद्धता का ज्ञान होता है उसकी अगली पर्याय सुधरी हुई आती है। अरे समझ में आया नहीं आया? जैसे सूर्य का उदय हो और कोई ये कहे, बच्चों सुनो बेटे, सूर्य का उदय हो और कोई ये कहे कि सूर्य का उदय होगा और प्रकाश नहीं होगा तो क्या होगा? कि ये नियम है कि सूर्य का उदय होगा तो नियम से प्रकाश होगा ही होगा। ऐसी जिसको पर्याय की क्रमबद्धता का निर्णय होगा, आप जानते हो पर्याय की क्रमबद्धता का जो निर्णय कराया गया वो क्यों कराया गया? वो इसलिए कराया गया कि अभी हमारा वर्तमान उपयोग बाहर की चिंता में एंगेज है, तो भगवान सर्वज्ञ कहते कि तू जिस चिंता से चिंतित है वो तो सब सुनिश्चित है, तो पर्याय की सुनिश्चितता जानकर वो ज्ञानी जीव वहां से उपयोग फ्री होकर स्वरूप में ढल जाता है। स्टेशन पर जल्दी कौन भागेगा जिसका रिजर्वेशन नहीं है, जिसका निश्चित है कि इस सीट पर बैठेगा तो जल्दी क्यों भागेगा स्टेशन पर? दुनिया में सूरज का निकलना निश्चित है, हर चीज का निकलना निश्चित है। वैसे क्रमबद्ध पर्याय का अलग विषय है पूरा का पूरा। गुरुदेव श्री के प्रवचन है ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव, अद्भुत है वो, अद्भुत है। एक और है बाबू जी का एक गजब का शब्द है क्रमबद्ध पर्याय में कि जो होना है सो निश्चित है, ये सेकंड सत्य है, द्वितीय सत्य है। पहला सत्य तो ये है कि कुछ होता ही नहीं है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, क्या नहीं होता? नहीं आया समझ में बात? नहीं आया तो सुनो, हम ये कहते जो होना है सो निश्चित है। जो जो ज्यादा बल लगाकर बोल रहा है ना, उसे ज्यादा चिंता है। सब निश्चित है, निश्चित, सब निश्चित, निश्चित। अरे निश्चित होता तो तू दुखी क्यों हो रहा होता? फिर से सुनना, सब होना निश्चित है, ये पर्याय का स्वरूप बताया। लेकिन पर्याय स्वभाव की दृष्टि से देखें तो कुछ होता ही नहीं है। क्या नहीं होता, कैसे नहीं होता, मुझे आप बताओ। ऊर्ध लोक अधोलोक में पहुंच गया क्या? जल्दी बोलो, उत्तर देते जाओ आप। है नहीं? अधोलोक ऊर्ध लोक में पहुंच गया क्या? छह द्रव्य सात बन गए क्या? तत्व अतत्व बन गया क्या? जीव अजीव बन गया क्या? नरक स्वर्ग में पहुंच गया क्या? वस्तु की व्यवस्था बदल गई क्या? तो फिर हुआ क्या है? अरे हुआ क्या है? इसलिए क्रमबद्धता ये सेकंड सत्य है। पहला सत्य ये है कि कुछ होता ही नहीं है। एक पर्दा है, पर्दा सामने, और उस पिक्चर के पर्दे पर आग लग रही है, धुआंधार सब कुछ हो रहा है। बताओ उस समय भी पर्दा स्वच्छ है या नहीं है? जल्दी बोलो। अच्छा मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे द्रव्य से स्वच्छ है या पर्याय से स्वच्छ है पर्दा। अरे जल्दी बोलो, क्योंकि पर्दा स्वयं पर्याय है। आग लगने के काल में भी पर्दा स्वच्छ है, उसी तरह पर्याय में राग की आग लगने के काल में भी पर्याय स्वभाव स्वच्छ है, क्योंकि पर्याय स्वभाव स्वच्छ है। बोलो स्वच्छ है या नहीं है? समझ में नहीं आ रहा आप लोगों के? इसलिए ये चिंता से तुम मुक्त हो कि पर्याय में क्या होगा, इस चिंता से मुक्त हो, और जो भी होगा वो क्रमबद्ध होगा। पहला तो ये सत्य है कि कुछ होता ही नहीं है। क्या हुआ है आज तक? इसलिए होने का हुआ बन गया ज्यादा। इसलिए गुरुदेव श्री ने कहा ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। जब ज्ञायक का आश्रय हो गया तो बाहर में दिखाई देने वाली हर पर्याय, उस पर्याय में मूलता है ही नहीं, तो पर्याय भी क्रमबद्ध है। अज्ञानी की पर्याय भी चेतनात्मक है या जड़ात्मक है? जल्दी बोलो। तो अज्ञानी की पर्याय भी चेतनात्मक है और ज्ञानी की पर्याय भी चेतनात्मक है। तो पर्याय स्वभाव को देखें, एक तो द्रव्य सामान्य और पर्याय विशेष, लेकिन पर्याय में भी पर्याय सामान्य को देखें, पर्याय सामान्य को देखें तो पर्याय में कुछ बदलाव होता नहीं है। बदलाव नहीं होता माने नित्य अनित्यपना उसका नित्य स्वभाव है। पर्याय का अनित्यपना नित्य स्वभाव है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होते ही दृष्टि अंतर पर चली जाती है। और प्रश्न जिन्होंने भी किया उनसे निवेदन है कि वो निर्णय कर ले, और फिर कुछ बिगाड़ हो जाए तो गुरुदेव श्री से और जिनवाणी से मिल लेना, कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। और प्रश्न है, हमें जिनवाणी की उतनी महिमा नहीं आती जितनी होनी चाहिए, तो प्रश्न है या आपके मन की पीड़ा? आप कह रहे हैं कि हमें महिमा नहीं आती, तो लाइए महिमा फिर आप। हम धर्म घर में से जिनवाणी निकाल के आईपैड का उपयोग करने लगे हैं, ये बात तो सच्ची है। देखो मैं तो ये कथा की वजह से रखा, मैंने तो मैं कभी, मेरे को मजा ही नहीं आता, मैं तो सामने जिनवाणी रखता हूं हमेशा जिनवाणी। अब वर्तमान में विज्ञान का आविष्कार हो ही गया है तो लोग टीवी या ये चीज तोड़ेंगे तो है नहीं, समझना। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए लोक में। जब विज्ञान का आविष्कार हो ही गया है और आज की जेनरेशन ऐसी है कि घर में ग्रंथ इत्यादि रखने की जगह नहीं, ऐसा इसमें मेरा एक सुझाव है, कई ग्रंथों में घर में नहीं लिखा, यदि आप आईपैड रखते हैं जिनवाणी का तो उसमें एक आईपैड अकेला जिनवाणी का रखें, उसमें कोई लौकिक दूसरी चीज ना डालें, दूसरी चीज ना डालें, और जहां तक संभव हो इसी जिनवाणी का प्रयोग करें। इसको डायरेक्ट 2400 घंटे प्रयोग करने से भी आंखें खराब हो जाती हैं, चश्मा चढ़ने लगता है। यह है, जिन वाणी घर में रखना नहीं चाहते वो भी गलत है। आप मान लिया आपके 200 साड़ी है घर में, एक एक बहन पर 200 साड़ियां और लगी पड़ी है, शादी के समय की साड़ियां लटकी पड़ी हैं, उन्हें देंगे भी नहीं किसी को, क्योंकि वो स्मृति के रूप में रखी रख रखी है कि ये जबकि पहनने में आती हैं 10-20, उनके लिए हम जगह घेर सकते हैं और एक अलमारी जिनवाणी की भर जाए तो हमको ऐसा लगने लगता है कि जिनवाणी बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। सच बात तो ये है कि हर घर में एक कमरा जिनवाणी का होना चाहिए, हर घर में एक कमरा जिनवाणी का होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे आगे आने वाली संतानें, उनको ऐसा लगे कि हमारा घर नहीं मंदिर है, उनको संस्कार आज नहीं तो कल को भविष्य में कोई पढ़ने वाला मिलेगा। यदि कुंद कुंद जिस समय पंच परमागम लिखे तो उस समय परमागम पढ़ने वाला कोई नहीं था, जिस समय टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा मोक्षमार्ग प्रकाशक को पढ़ने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, उस समय धवला ग्रंथ जंगलों में लिखा गया, कैसी कैसी बलिदानों से ये ग्रंथ मिले, आंखों से अश्रु धारा बह निकलेगी आपके, 50-50 वर्ष तक तो ग्रंथों की होली जली, कोई बचाने वाला नहीं मिला, हमारे भाग्य से 5 परमागम बच गए और आज जितना श्रुत पर्याप्त है उतने श्रुत का शतांश हिस्सा भी अपने जीवन में ले आए तो मुक्ति हो जाए जीव को, ऐसा है। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए अब इसका पढ़ने वाला कौन है, ऐसा भी युग आएगा, घबराना नहीं। ऐसे भविष्यवक्ता कहते हैं कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हो गया तो फिर जब विश्व युद्ध के बाद विश्व होगा वो फिर से वही पहिए वाला युग आ जाएगा, लोग इन चीजों से कंटाला आ जाएगा, इनसे लैपटॉप ये पूरे ऐसे ऐसे जो नेट चलता है इससे परेशान हो जाएगा व्यक्ति आधुनिकता से, पुनः किसी चीज के अति हो जाने के बाद उसका विनाश भी निश्चित है, ऐसा है। इसलिए जिनवाणी से कभी परहेज नहीं करना। हाँ आपके घर में परिग्रह हो गया हो तो कपड़े कम करो, सूटकेस कम करो, पाप की वस्तुएं कम करो तो वो आवश्यक है। और बोलिए प्रश्न, एक अच्छा ही बहन जी ने दिए थे प्रश्न, कहां गए जी आपके प्रश्न, कोई आपके प्रश्न थे ना लिख के दिए क्या आपने, नहीं दिए कोई बात नहीं। और बोलिए कोई एनी क्वेश्चन, किसी को कोई भी प्रश्न हो, चरणानियोग संबंधी, द्रव्यानियोग संबंधी, जीवन संबंधी, तो अपन जहां तक संभव होगा उसके समाधान करने की चेष्टा करेंगे, कोई भी प्रश्न हो किसी के पास। हाँ एक और है, ये जो आया तो इसलिए बता रहा हूं मैं, कोई हार्ड एंड फास्ट मत समझना किसी चीज को, कुछ उत्तर सैद्धांतिक होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ और कुछ उत्तर तारतम्यता वाले होते हैं, ऐसा होता है। जैसे बहन जो नमस्कार करती है जिन मंदिर में ऊपर, वो पुरुषों के आसन में नहीं करना चाहिए, बहनों को गौ आसन में करना चाहिए, ये चरणानियोग के ग्रंथ में आता है इस तरह से, ये पैर ये पीछे करके फिर माथे को नीचे लगाना चाहिए। आपको हो गया ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जैसे पुरुष वर्ग भगवान को प्रणाम करते हैं यदि बहनें इस तरह से प्रणाम करेंगी तो उसमें शील का दोष आता है, माने उनके देह की संरचना इस प्रकार की है कि वहां पुरुष वर्ग इत्यादि भी मंदिर में होते हैं और वो ऐसा उचित नहीं लगता है, वो आसन उचित नहीं लगता, इसलिए बहनों के लिए यही आसन का आदेश है ग्रंथों में। हाँ पैर पीछे करके फिर वो इस तरह से भगवान को नमस्कार करें, यही आदेश है। ऐसा करती है तो उसमें कोई दोष नहीं है, भावना ही तो है, भावना ही तो है, भावना तो भा सकती है ना, बेचारी कर नहीं सकती तो भावना तो भा ही सकती है ना, कि इसका भावना भा सकती है, भावना के बल से ही तो देखो आप कि सच्ची इंद्राणी अगली पर्याय में मनुष्य बनकर मुनि बनकर कर्म काट के मुख चली जाती है, भावना भाने में कोई दिक्कत नहीं है, भावना भाई है। ऐसा भाई भगवान का अभिषेक प्रक्षाल हो रहा है तो उस समय जड़ सरीखा थोड़ी खड़ा रहेगा व्यक्ति, ऐसा होता है। लेकिन कुछ जो हमारे भाई यहां पर सुबह को सेवा प्रदान करते हैं, जो दो चार मंदिर में आप लोगों ने रख रखे ना, तो वो पहले से ही बहनों को सामग्री देना ये सब शुरू कर देते हैं, तो दे देते तो टच हो जाते हैं बहनों से, और उसके बाद फिर वो प्रतिमा को भी उसको साफ करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना उसका, मेरे को ऐसा लगा। हाँ, तो क्योंकि जब तक आप प्रतिमा आप यदि स्पर्श कर रहे हैं तब तक किसी भी चीज से स्पर्श नहीं हो सकते, किसी के कपड़े से और बहनों से तो बहुत सवाल ही नहीं होता, वो तो तीर्थंकर है और तीर्थंकर बत ही हम उनको मान रहे हैं स्थापना निक्षेप से, इसलिए उनकी शुद्धि का पंच कल्याणक प्रतिष्ठित प्रतिमा है परम पवित्र, तो उनको अहो भाव और बहुत शुद्धता के साथ उसका बहुत विवेक रखा जाता है, ऐसा है। और बोलिए कोई कोई एनी क्वेश्चन किसी का, कोई हो युवा वर्ग का किसी भी तरह का। नहीं बस अभिषेक बारे में क्या बताया, वैसे तो क्या है जी, जितने गांव उतनी पद्धति, ऐसा है। पद्धति में कोई एकांत नहीं करना चाहिए, बस वो हिंसक तो नहीं है, दूषित तो नहीं है, उसमें राकत सराकता का दोष तो नहीं आ रहा, वो देखना चाहिए। हम तो इतने गांव में घूमे, कहीं एक जैसी पूजन पद्धति होती नहीं, और कहीं किसी ग्रंथ में लिखा भी नहीं है कि ये पूजन पद्धति ऐसा ही होना चाहिए, ये तो हमने अपनी अपनी एक क्रिएट कर ली, और उसमें दोष नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात है, कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी जी, बड़ों और छोटों के लिए यही मैसेज है, जीवन थोड़ा है, भौतिकता का आकर्षण जगत में बहुत है, बहुत है, चारों तरफ पतन ही पतन है, इसलिए ये कहते ना प्रतिज्ञा दिलाओ, एक बार ये प्रतिज्ञा कर लो कि ये भव मेरा भव के अभाव करने के लिए हुआ है, अनंत काल एक तरफ और 25-50 वर्ष की जिंदगी एक तरफ, तो 25-50 वर्ष का भविष्य देखें या अनंत काल का भविष्य देखें, बाकी सब मिलेगा, कहीं कुछ दम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपने अपने बच्चों को यहां से परदेश भेज देते हैं पढ़ाने के लिए, फिर वहीं उनकी सर्विस लग जाती है, अब बेचारे माता पिता सारे जीवन जिनके मुख से नमोकार मंत्र सुनते, भेद विज्ञान की बात सुनते, वो बेटा परदेश चला गया, हो सकता है वो अंतिम समय तब आए कि चिता में अग्नि भी नौकर लगाएं, पड़ोसी लगाएंगे, वो आया तो मिला ही नहीं कुछ, राख मिली, तो कुछ जीवन है क्या, कहां रखा है। मैं कह रहा हूं सुख कहां है, किसी दीवारों में सुख है क्या, क्या विदेश की धरती पर सुख है क्या, कहां सुख है क्या, अमेरिका में चार फेफड़े होते हैं क्या, वहां के मुर्दों की हड्डियों से आनंद निकलते हैं क्या, इसलिए वो देश छोड़ दो, वो मोहल्ला छोड़ दो, वो गली छोड़ दो जहां जिन धर्म की आराधना ना हो सके, और यदि जिन धर्म की आराधना झोपड़ी में भी रहकर होती है, सुबह देव दर्शन पाठ पढ़ते हैं, प्रभु मैं आपके दर्शन के बिना चक्रवर्ती बनना पसंद नहीं करूंगा, और मैं दरिद्र रहकर भी जिन धर्म की आराधना करना पसंद करूंगा, ये तो गुरुदेव इसके साक्षात आदर्श हैं, हर प्रसंग गुरुदेव में मिल जाएगा आदर्श का, हर प्रसंग ऐसा है, इसलिए अंदर से जिन शासन की महिमा आए बिना बस हो गया, इतनी पढ़ाई कर ली कि मेरे घर से मैं भूखा ना जाऊं और कोई मेरे घर से साधर्मी भूखा ना जाए, इतना धन पर्याप्त है बस, और अधिक धन इकट्ठा करोगे तो रोगों के काम आएगा, क्योंकि जिन पे ज्यादा पैसा होता है ना वो हर महीना चेकिंग कराने जाते ही जाते हैं, पैसा हिलने कैसे लगे, अब बहुत पैसा आए तो क्या करें, पहले जमाने में कोई जानता भी नहीं था ब्लड प्रेशर क्या होता है, मेरे पिताजी 75 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष तक तो उन्होंने कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराया, बोले मिनके आपको ब्लड प्रेशर, बोले छोड़ काहे का ब्लड प्रेशर, मेरी माँ के यहाँ छाती में दर्द हुआ, मिनके मम्मी सुबह ले चलते हैं वहां डॉक्टर के, लोग कह रहे हैं ये बाएं कंधे में दर्द होना गलत माना जाता है, बोले मैं ना जा रही, मैं ना जाऊंगी कहीं डॉक्टर वॉक्टर के, मैं ना जाऊंगी। अब अधिक पैसा हो जाए व्यक्ति के तो वो 24 घंटे डॉक्टर भी ऐसी बातें सुनाते हैं उसको, भैया
हर महीने चेक कराते रहना चाहिए। अब मनुष्य भव इसके लिए रहा, मैं हर महीना चेक कराता रहूंगा, हर महीना हो गई पर तो आराधना आत्मा की। अरे देह जब तक रहना हो रहेगा, नहीं रहना हो नहीं रहेगा। जब मैं तो अजर अमर चैतन्य तत्व हूं तो मर गए मारने वाले, जब मैं अमर तत्व हूं तो मुझे काहे की चिंता है, ऐसा है। मत उसमें ज्यादा इतना शरीर के प्रति इतना प्रतिबद्ध हो जाना कि 24 घंटा उसी की तो लगता है तुझे आत्मा की रुचि नहीं है। इसलिए इतना पैसा बहुत है कि आप भक्ष्य भोजन कर लो, आपके घर से कोई धर्मी भूखा ना जाए और जिन शासन की प्रभावना में आपका मन लगा रहे। बाकी इससे अधिक पैसा विषयों में जाएगा, पापों में जाएगा, अनाचारों में जाएगा, रोग में जाएगा, अप्रभावना में जाएगा। दान देने का भाव तो है नहीं, दान देने का भाव तो करोड़ों में किसी एकाध दो को होता है। और कदाचित दान देने का भी भाव हो तो ऐसा लिखा, अन्याय करके पैसा कमाकर दान मत देना। अन्याय के पैसे से प्रभावना नहीं होती। बोलिए और कोई। हाँ जी, हाँ जी, बराबर, हाँ जी। ये तो वास्तव में जब इतना पैसा खर्च हो रहा था तो उस समय मुझे भी विकल्प आया और मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि यही पैसा यदि हाईवे पर लगाते तो बहुत बड़ी ट्रस्ट बनती, बहुत बड़ी संस्था बनती। सत्य तो ये कि आज ये दृश्य देखकर ज्ञान हो रहा है कि वहां से अनंत गुनी प्रभावना यहां मुंबई शहर में हो रही है अभी ये। और यहां जो लोग एकत्रित हुए हैं ये सब मतलब समझ लो निकट भवी हैं, वरना इतने संघर्ष की लाइफ यहां पर है फिर भी छोड़कर आ रहे हैं तो मनोरंजन के लिए तो नहीं आ रहा कोई यहां पर। मनोरंजन का प्रेमी कोई नहीं है यहां पर, यहां कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए कोई नहीं आ रहा। तत्व ज्ञान के लिए सब प्यासे हैं, तत्व ज्ञान के लिए आ रहे हैं। सबके इतने सरल परिणाम है कि मैं देख के आश्चर्यचकित हूं, बहुत सरल परिणामी जीव है सब। ऐसा लगता है कि भावी कहीं हो सकता है, एक साथ मोक्ष जाने वालों की भीड़ यहां पर एकत्रित हो गई है और इसमें कोई शक नहीं है, जाएंगे ही। जब मोक्ष स्वरूप वर्तमान में ही नजर आ रहा है तो भावी में क्या संशय करना। और एक नियम और है, महापुरुष अकेले किसी वस्तु का लाभ नहीं लेते। नहीं आया समझ में? जैसे चक्रवर्ती चक्रवर्ती हुआ तो खुद ही चक्रवर्ती के भोग का आनंद ले, पूरी प्रजा भी आनंद भोगती है। इसलिए हमारे गुरुदेव अकेले मोक्ष नहीं जाएंगे अकेले मोक्ष नहीं जाएंगे वो, ऐसा नहीं है। बहुत अद्भुत प्रभावना है और जो भी लोग लगे हैं इस प्रभावना के कार्य में उन्हें शायद नहीं मालूम कि वो कितना साथी से ज्ञान की अनुमोदना कर रहे हैं, कितनी साथी से ज्ञान की अनुमोदना। उसके फल में स्वयं कोई पढ़ाना से केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान दान नहीं होता, ज्ञान के हर कार्य में, ज्ञान के हर कार्य में अनुमोदना करना वो सब ज्ञान की अनुमोदना कहलाती है। बस दो मिनट और बची 9:15 बजने में, बोलो किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो, बाद में फिर बहुत पूछते हैं सीढ़ियों पर सीढ़ियों पर बहुत पूछते हैं प्रश्न, अभी प्रश्न नहीं होता इनको नहीं, सूर्य को नमस्कार करना ग्रहित मिथ्यात्व है, चंद्र सूर्य को नमस्कार करना ग्रहित मिथ्यात्व है। चंद्र सूर्य भगवान की परिक्रमा करते हैं उल्टा, ऐसा है। हम चंद्र सूर्य को क्यों नमस्कार करेंगे, वो तो पृथ्वी काय है। एक चंद्र में चंद्रकांत मणि से बना है, सूर्य सूर्यकांत मणि से बना है। लोग कहते हैं भरत चक्रवर्ती को सूर्य में जिन बिंब नजर आती है तो उनको नमस्कार करते थे, आपको नजर आ रही तो आप कर लो, हमको तो नजर आ नहीं रही तो बिना नजर आए किसी आग के पिंड को कैसे नमस्कार करेंगे, क्या रखा है। लुट गया इसमें देश कि तुम पे शनिचर है, कि तुम पे मंगलवार है, कि शनिवार को तेल दिया करो, लोहा दिया करो, ऐसा किया करो, वैसा किया करो, कौन किसको कर। ये तो ये सब के सब विमान हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारकाश्य उमा स्वामी का सूत्र है। ये वैमानिक ज्योतिष देवों के भेद हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, इनमें अकृत्रिम जिन बिंब है। ढाई दीप के अंदर रहने वाले चांद सूर्य गमन करते हैं, ढाई दीप के बाहर रहने वाले चांद सूर्य स्थिर रहते हैं, गमन नहीं करते हैं। ऐसा ये हमारे पाप का उदय हो तो सारी ग्रह तिरछी है, और यदि पुण्य का उदय हो तो, और हम तो कहते पाप का भी उदय हो तो भी आत्मा का कोई बाल बांका करके दिखाते हैं। कोई भी पाप का उदय आत्मा का बाल बांका नहीं कर सकता, और कोई भी पुण्य का उदय आत्मा का भला नहीं कर सकता। ऐसा है। चलिए।